आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि भारत और जापान के रहे हैं सदियों से परस्पर संबंध। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के मामले में याचिका की खारिज। 27% आरक्षण का रास्ता हुआ साफ। प्रयागराज में कल मौनी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए और अधिक रेलगाड़ियां चलेंगी। और खंडवा में अनुभूति कार्यक्रम में भावी नागरिकों ने सीखे वन संरक्षण के संस्कार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि भारत और जापान के सदियों से परस्पर संबंध रहे हैं। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक जापान का समृद्ध इतिहास रहा है। मुख्यमंत्री आज जापान स्थित भारतीय दूतावास में इंटरेक्टिव सेशन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश के अवसर पर उद्योगपतियों से संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि इस यात्रा से मध्य प्रदेश जापान की मित्रता में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गर्व का विषय है कि जापान से मध्य प्रदेश के व्यावसायिक संबंध भी जुड़े हैं। डॉक्टर यादव ने जापान के उद्योग समूहों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जापान के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। उनका दौरा 31 जनवरी तक चलेगा। मुख्यमंत्री का यह दौरा इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश अभियान का प्रमुख हिस्सा है, जो फरवरी में भोपाल में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले महीने की 1 तारीख को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आम बजट पेश करने की तैयारी कर रही हैं। विशेषज्ञों और आम लोगों को उम्मीद है कि इस बार आगामी बजट में सरकार देश में सुदृढ़ ढांचा बनाने पर बल देते हुए विकास, रोजगार सृजन और वित्तीय प्रबंधन पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगी। भोपाल में उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर मनीष शर्मा ने बजट घाटा कम करने पर जोर दिया है।
मैं चाहूंगा कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो 4.5% के आसपास या उससे कम रहे तो ज्यादा अच्छा। जो हमारा जीएसटी है वो कम रहे या रेशनलाइज और ज्यादा हो जाए तो हमारे ऊपर भार कम हो, और जो इनकम टैक्स स्लैब है उसको भी रेशनलाइज करने की जरूरत है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आज ओबीसी आरक्षण के मामले में यूथ फॉर इक्वलिटी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के साथ ही प्रदेश में समस्त रुकी हुई भर्तियों को फिर से शुरू करने और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। अब उन समस्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो सकती है जिन्हें 13% के दायरे में लेकर होल्ड कर दिया गया था। दरअसल 4 अगस्त 2023 को हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश के तहत राज्य सरकार को 87% और 13% का फार्मूला लागू करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने आज अपने इस फैसले में इस आदेश को रद्द कर दिया। आरटीओ डिपार्टमेंट के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा को लोकायुक्त ने आज गिरफ्तार किया है। उसके बाद से ही लोकायुक्त उनसे पूछताछ कर रही है। लोकायुक्त डीजी जयदीप प्रसाद ने आज भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भोपाल की एक लोकेशन से सौरभ को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि उससे लोकायुक्त की एक टीम निरंतर पूछताछ कर रही है और 24 घंटे के अंदर पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।
सौरभ शर्मा, जिसके खिलाफ पीसी एक्ट में केस कायम है हमारे लोकायुक्त संगठन में, हिरासत में हमारी पुलिस ने लिया है उसे, और बाकी भी हिरासत में लेके पूछताछ जारी है, और उसे पूछताछ समाप्त होगी उसकी गिरफ्तारी करने के बाद, और 24 घंटे के अंदर में हम उसे माननीय न्यायालय में पेश करेंगे।
राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि जेल के अंदर सुधारात्मक सेवाओं के साथ ही जेल के बाहर भी समाज सुधार के प्रयासों की पहल की जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि अपराधों की प्रकृति, परिस्थितियों और स्वरूप के विश्लेषण से प्राप्त जानकारियों के आधार पर समाज के साथ संवाद के कार्यक्रम तैयार करें। अपराध घटित नहीं हो इस दिशा में सामुदायिक जनजागृति के प्रयास किए जाने चाहिए। राज्यपाल आज गृह विधि जेल विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। उन्होंने जेल में शिक्षा, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता के द्वारा बंदियों को सुधारने और पुनर्वासित करने के प्रयासों की जानकारी ली। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में कल मौनी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने और अधिक रेलगाड़ियां चलाने की योजना बनाई है। संवाददाताओं से बातचीत में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार ने कहा कि रेलवे ने पहले से तय विशेष ट्रेनों के अलावा 60 और विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इसके साथ ही मौनी अमावस्या के अवसर पर चलाई जाने वाली विशेष ट्रेनों की कुल संख्या 190 हो जाएगी। प्रयागराज से यात्रियों के लिए हर 4 मिनट पर एक ट्रेन उपलब्ध रहेगी। प्रदेश के खरगोन जिले की शैली होलकर को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। शैली ने महेश्वर के हथकरघा उद्योग में जान फूंक दी है। उन्होंने अपने जीवन के 5 दशक इसी काम में लगा दिए। उन्होंने इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्कूल की स्थापना भी की है।
मुझे आइसक्रीम अच्छा लगता और अवार्ड भी अच्छा लगता। हैप्पी फॉर हैंडलूम, हैप्पी फॉर लेडी वीवर्स आल्सो, हैप्पी फॉर हैंडलूम इन इंडिया। जितना इसका एग्जिस्टेंस, इसका फायदा है, जितना वो सारे दुनिया में लोग समझते हैं ना, तो खरीद लेंगे, डिमांड करेंगे, ऑर्डर भी दे देंगे।
खंडवा में मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड के सहयोग से अनुभूति कार्यक्रम आयोजन वन परिक्षेत्र पूर्व कालीभीत में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के भावी नागरिकों में वन संरक्षण के संस्कार विकसित करना है। कैंप में पक्षी दर्शन, ट्रैकिंग, नेचर ट्रेल, प्रश्नोत्तरी आदि विभिन्न प्रतियोगिताएं और गतिविधियां हो रही हैं। वन परिक्षेत्र अधिकारी NR कुशवाहा द्वारा स्कूली बच्चों को पक्षी दर्शन, वृक्ष संबंधी प्रकृति का परिचय आदि के बारे में बताया गया।
ये जो है आज अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड की ओर से प्रतिवर्ष स्कूली विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य बच्चों को वनों में ला करके वनों के प्रति जागरूक बनाना, वनों की अनुभूति कराना, वन्य प्राणियों की अनुभूति कराना और उनके मन में ये चीज बिठा देना अच्छी तरह से कि हमको आगे जाके वनों की रक्षा करना है, वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसी से उनको अवगत कराया जाता है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 2024 में लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई और इनमें से 1,80,000 लोगों की मौत हुई। श्री गडकरी आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास और प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा आयोजित प्रोजेक्ट अभय के समापन पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 66% मौतें 18 से 34 वर्ष के आयु वर्ग में हुई। प्रोजेक्ट अभय का उद्देश्य देशभर में ट्रक ड्राइवरों के जीवन में सुधार लाना है। श्री गडकरी ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए माल भाड़े को कम करने पर भी जोर दिया। प्रदेश में स्कूली विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिए जाने के उद्देश्य से नई शिक्षा नीति 2020 में रोचक एवं आनंददायक शिक्षा दिए जाने की अनुशंसा की गई है। इस उद्देश्य से सीएम राइज योजना में 9,200 विद्यालयों का चयन किया गया है। इन विद्यालयों को 2 चरणों में सर्व संसाधन युक्त बनाया जाएगा। योजना के पहले चरण में 274 विद्यालयों का चयन किया गया है, जिसमें से 22 स्कूल भवनों का निर्माण पूर्णता की ओर है। वहीं दूसरे चरण में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में 276 विद्यालयों को सर्व संसाधन के रूप में विकसित किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने आज निषादपुरा रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित प्लेटफॉर्म, पैदल पारपत पुल, यात्री सुविधा के लिए लगाई गई लिफ्ट, रैंप, यात्री प्रतीक्षालय सहित अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण किया। आज से सीहोर भोपाल ओल्ड रोड पर फंदा रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण के चलते रेलवे गेट स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। गुना में आज कलेक्ट्रेट परिसर के जनसुनवाई कक्ष में अपर कलेक्टर अखिलेश जैन ने जिला स्तरीय जनसुनवाई में आमजनों की समस्याओं का निराकरण किया। आगर मालवा जिला परिवहन एवं यातायात विभाग और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आज सुसनेर में आयोजित नेत्र प्रशिक्षण शिविर में 82 वाहन चालक व परिचालकों का नेत्र परीक्षण किया गया। अशोकनगर में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना के अंतर्गत PBTG परिवारों के लिए मैटरनल कैंपों का आयोजन जिले के समस्त उप स्वास्थ्य केंद्रों पर किया गया। छिंदवाड़ा में भारत पर्व का आयोजन पूरे उत्साह और गरिमा के साथ किया गया। यह आयोजन राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय छिंदवाड़ा में संपन्न हुआ और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिषद द्वारा आज भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों में वीथी नाटकों का आयोजन किया गया। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।